ओम शांति। एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। फेमस साइंटिस्ट हुए आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन ने बहुत सारी खोजें की और वो अपनी खोज के बारे में जगह जगह जाके भाषण करते थे, बताते थे अवेयरनेस देने के लिए। तो जब वो अवेयरनेस देने के लिए बता रहे होते थे तो उनका जो ड्राइवर था वो उनके साथ होता था। तो हर जगह वो आइंस्टाइन का भाषण सुन रहा था। एक जगह, दो जगह, दस जगह, पंद्रह जगह उसने स्थान स्थान पर उनका भाषण सुना। और वो एक और स्थान पर जाने से पहले कहता कि सर अब तो आप रहने दीजिए, आप थक गए होंगे, आपकी जगह भाषण मैं कर लूंगा। क्योंकि उसने इतनी बार सुना कि उसको वो बिल्कुल याद हो गया, क्रैम हो गया, रटा गया, तो मैं भाषण कर लूंगा। उसने कहा ठीक है। आइंस्टाइन ने अपना ओवरकोट और अपनी हैट उसे दे दी। वो लोग कौन जानते थे, पहले ऐसा नहीं होता था कि बड़े बड़े कोई पोस्टर फ्लैग्स लगा के कहीं एडवर्टाइजमेंट होती हो। तो उन्होंने तो आइंस्टाइन को देखा नहीं हुआ, तो अपना ओवरकोट और वो अपनी हैट उसे दे दी और कहा तुम भाषण करो। तो जैसे जैसे आइंस्टाइन बोलते थे बिल्कुल वैसा वैसा उसने एक्यूरेट वैसा ही भाषण किया। और भाषण करने के बीच में जब किसी ने कुछ उस इन्वेंशन के बारे में कुछ बात पूछी, किसी ने क्वेश्चन पूछा, तो वो ड्राइवर कहता व्हाट ए सिली क्वेश्चन, माय शॉफर कैन आंसर इट। पीछे जो आइंस्टाइन बैठे थे उसकी तरफ इशारा कर दिया। उसने ये तो सोचा ही नहीं था कोई आंसर भी कुछ प्रश्न ही पूछ लेगा। तो ऐसे ही भाई साहब का, पहले हम सूर्य भाई को कहते थे भंडारे वाले सूर्य भाई जी, आजकल कहते हैं समाधान वाले सूर्य भाई जी। तो दो साल से एक भाई वहां आते हैं चंडीगढ़ में, तो वो प्रोग्राम सुन रहे थे और एक साल से वो ज्ञान में चल रहे हैं। तो वो आके मुझे कहते कि मुझे लगता है मैं सूर्य भाई को थोड़ा आराम दूं। मैंने इतने सुन लिए उनके प्रश्नों के उत्तर कि अब मुझे लगता है मैं भी समाधान दे सकता हूं। तो उसकी बात सुन के मुझे आइंस्टाइन वाली बात याद आ गई थी। क्योंकि समाधान देना, वर्बली बताना आसान है, लेकिन जब खुद पर वो समस्या आए और खुद को वही बात समझाना, ये अनुभव होता है। तो भाई साहब बहुत अनुभव जनित बहुत सी बातें बहुत अनुभव जनित इस तरह से समझाते हैं कि वो लगता है बिल्कुल आसपास। डॉक्टर को सारी बीमारियां लगी नहीं होती, लेकिन फिर भी डॉक्टर सारी बीमारियों का इलाज जानता है, उनके दर्द को महसूस करना जानता है कि दर्द आपको कैसा कैसा हो रहा है, चलने वाला दर्द है कि कूदने वाला दर्द है, ऐसा ऐसा डॉक्टर बताता है। तो ऐसे ही जब कोई प्रश्न या समस्या पूछता है तो लगता है सूर्य भाई को सारी समस्याओं सभी बातों का इलाज मालूम है। तो इसीलिए आप समस्याएं नहीं, आप प्रोग्रेस की बातें जानेंगे कि और प्रोग्रेस कैसे करें, इतना आगे बढ़ें कि औरों को बढ़ाने वाले बन जाएं, क्वालिटी वाले ब्राह्मण बनकर ही यहाँ से जाएं। ओम शांति। आपका टॉपिक है जी निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्थिति।
ज्ञान में जो 5 साल से कम है वो जरा हाथ उठा दो। हमें संगम युग पर अपने पुरुषार्थ से पूरी तरह संतुष्ट बनना है। टॉपिक तो तीनों ऐसे हैं कि तीनों के लिए बहुत टाइम चाहिए। हम 1 घंटे में पूरा करेंगे क्योंकि निर्विकारी स्थिति बहुत बड़ी स्थिति है, 10 घंटे बोला जा सकता है इस पे। और निरहंकारिता भी ऐसा ही सब्जेक्ट है, बहुत सूक्ष्म है। मैं आपकी उपयोगी चीजें इसमें रखूंगा। ये तीनों ऐसे टॉपिक हैं, ऐसी धारणाएं हैं जो बाबा ने अपनी अंतिम मुरली में हमें दी थी 18 जनवरी रात्रि क्लास। सवेरे का क्लास नहीं हुआ था, बाबा की तबीयत ढीली थी, उसमें बाबा ने तीनों धारणाएं दी थी। तब से ये तीनों हम सबके मुख पर आ गई थी। फिर इनमें लिंक है, जो निराकारी बन जाए वो संपूर्ण निर्विकारी हो ही जाएंगे, और जो संपूर्ण निर्विकारी है वो अहंकार से मुक्त स्वतः ही हो जाते हैं। इसलिए फोकस करना है निराकार स्थिति, और निराकार स्थिति को ज्यादा भारी न बना के योग युक्त स्थिति। हम कर्म क्षेत्र पर हैं, हमें अपने जीवन में ये सीखना है कि हम योग युक्त होकर जीवन कैसे जिए, इसको अपनी नेचर बनाएं। और योग युक्त को बड़ा सरल करने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। आजकल इसी हॉल में अव्यक्त बाबा आए हुए थे, तब ओम शांति भवन नहीं था। मुरली के बाद बाबा को जूस दिया जाता था पीने के लिए, बाबा को जूस का गिलास दिया गया, बाबा ने उसे जैसे ही दृष्टि दी, पास में शील इंदिरा दादी बैठी थी, बाबा के बहुत क्लोज थी वो, पुराने जानते हैं बॉम्बे में। उसने कहा, बाबा आप किसे याद कर रहे हो? इसी स्पीड से पूछा, आप किसे याद कर रहे हो? उत्तर सुनो बाबा का, जो बड़ा रहस्य भरा उत्तर है। श्री बाबा ने उत्तर दिया, इसे, किसे? ब्रह्मा बाबा को। इसे अब किसी को याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये स्मृति स्वरूप हो चुका है। स्मृति स्वरूप स्थिति, हम तो सन्न रह गए ये बात सुन के। तब हमें स्मृति स्वरूप स्थिति का ज्यादा ज्ञान नहीं था। धीरे धीरे बाबा ने सब स्पष्ट किया। जो बाबा ने हमें स्मृतियां दिलाई उनका स्वरूप हम बनते जाएं। हमें याद दिलाया तुम देव कुल की महान आत्मा हो, है ना सभी, हम उस स्वरूप में आ जाएं। प्योरिटी भी सरल, देवत्व संपूर्ण जीवन में उभरने लगेगा। हमें देवत्व को धारण करने की मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, सारे सद्गुण जीवन में समा जाएंगे। तो पहले मैं निराकारी स्थिति को लेता हूँ, जिसको बहुत अच्छा इसका अभ्यास करना है और अपने चित्त को शांत करना है, वो एक अभ्यास करेंगे। इसके कई स्वरूप आप ले सकते हैं। मैं आत्मा यहाँ हूँ, अपने निराकार स्वरूप को देखेंगे बहुत अच्छी तरह, और धीरे से मेरा शरीर लोप हो गया, बच गई मैं निराकार आत्मा। इसकी बहुत प्रैक्टिस करेंगे। योग हमारी ऐसी साधना है जो हमसे प्रैक्टिस चाहता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आधे मिनट के लिए ही क्यों ना करें हम एक बार, लेकिन बहुत बार कर जाएं, दिन में 25 बार कर जाएं, हर घंटे में 2 बार, 10-10 सेकंड के लिए, आधा मिनट के लिए, क्या फायदा होगा? सारे संकल्प इस निराकारी स्वरूप में समा जाएंगे। आजकल के संसार में जो सबसे बड़ी समस्या है और जो बढ़ती जा रही है, संकल्पों की स्पीड फास्ट, नेगेटिव सोचना ज्यादा, जिससे बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। युवा वर्ग तो इसमें घिर चुका है। निराकारी स्थिति में सभी संकल्प समा जाते हैं, चित्त शांत हो जाता है। दूसरा अभ्यास, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी। अलग अलग संकल्प लेके करेंगे। मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य, मैं आत्मा पवित्रता का सूर्य। अलग अलग संकल्प ले ले, 7 दिन के लिए 7 ले सकते हैं। अच्छी प्रैक्टिस की जाए। जिन्हें अपने जीवन को योग युक्त बनाना है, चित्त को शांत करना है और माया से मुक्त होना है। माया बहुत प्रबल है। 15 दिन अशरीरी होने की प्रैक्टिस कर लें, फोकस कर दें इसी पे। मैं निराकार आत्मा, ये मेरा देह, देखें अपने देह को, ये मुझसे अलग, मैंने इसमें प्रवेश किया है, अलग ये है। ये बहुत प्रैक्टिस चाहता है। रेड लाइट करेंगे, अब हम 2 मिनट के लिए इसको प्रैक्टिस में लाएंगे। सभी देखें अपने स्वरूप को भ्रकुटियों के मध्य में। मैं निराकार तेजस्वी आत्मा, बहुत तेजस्वी। मुझसे चारों ओर गोल्डन किरणें फैल रही हैं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, देह लोप हो गया, बच गई मैं निराकार आत्मा। उड़ने लगी ऊपर की ओर, बाबा के पास टच किया बाबा को। आ गई वापिस इस देह में, फिर से भ्रकुटी की कुटिया में। ओम शांति। क्लियर विजुअलाइजेशन हो आत्मा का स्वरूप और बाबा का स्वरूप, अपने पांचों स्वरूप हमें क्लियर दिखाई दें। सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसपे श्रेष्ठ पुरुषार्थियों को ध्यान देना है, बुद्धि को स्वच्छ रखना, निर्विकारी स्थिति के लिए भी बुद्धि को स्वच्छ रखना। हरेक यहाँ मधुबन में आकर अपने को देखे, मैंने अपनी बुद्धि में क्या भरा है, गंदगी या ईश्वरीय खजाने, वरदान या दूसरों के लिए बुरी भावनाएं, क्या भरा है। ये बुद्धि हमारा पात्र है, इसको स्वच्छ रखने से इसमें सर्व खजाने भरने लगते हैं। प्योरिटी में हम एक्सपर्ट हो जाते हैं, परफेक्ट। बुद्धि में किसने क्या भरा है, कई लोग बहुत परेशान रहते हैं जीवन में। सीधा सा अर्थ है कि बुद्धि में गंदगी भर ली है। जिस बुद्धि में गंदगी है वहां न वरदान ठहरेंगे, न शक्तियां और न शिव बाबा आएगा। हम सोच लें, यहाँ चिंतन करना, मैं एक श्रेष्ठ योगी हूँ, मुझे अपनी बुद्धि को ऐसा डिवाइन बनाना है जिसमें भगवान आकर बैठे, जिसमें उसके वरदान समा जाएं, जिसमें सारी शक्तियां भर जाएं। चिंतन करें, मेरी बुद्धि इस गंदगी के लिए है ही नहीं। और डेली एक सजेशन है, डेली 15-20 मिनट स्वयं को देना है एकांत में चिंतन के लिए। जितना सुंदर चिंतन आप 15 मिनट में कर लेंगे, व्यर्थ उतना ही समाप्त हो जाएगा। क्या चिंतन करना है, लिख लें जो लिख रहे हैं। अपने से पूछते रहना है, क्या मैं संगम युग का समय उसी तरह बिता रही हूँ जैसे मुझे बिताना चाहिए। क्या हम वो कर रहे हैं जो हमें कर लेना चाहिए। मेरा संगम युग कैसे बीत रहा है, मुझे ये अनमोल घड़ियां कैसे बितानी हैं। एक सुंदर प्लानिंग होनी चाहिए। भाग्य बनाने का समय चल रहा है, ऐसा समय हम सब जानते हैं जो दोबारा कभी नहीं आएगा, जिसकी हमने इंतजार की 2500 वर्ष, दोबारा नहीं मिलेगा। और जो आप में से पुराने बाबा के बच्चे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए, बाबा का ही महावाक्य है, आने वाले समय में सेवाएं उनके द्वारा होंगी जिन्होंने स्वयं में सर्व खजाने भरे होंगे। ये वाचा की सेवा बहुत थोड़ी रह जाएगी। टीवी के द्वारा ये काम हो रहा है, हमें जरूरत ही नहीं रहेगी। दृष्टि के द्वारा सेवा होगी, हमारा एक एक बोल वरदान ही बन जाएगा, उससे सेवा होगी। इसलिए एक 5 साल का प्लान बना के जाए यहां से। मेरी ये बात सुन के ये ना सोच लेना विनाश हो जाएगा। एक 5 साल का पुरुषार्थ का प्लान बनाए, ये करना है, और हर व्यक्ति उससे डबल कर सकता है जो वो अब कर रहा है, ये भी समझ लेना चाहिए। कम से कम डबल, हर एक के पास समय है, समय को लोग मैनेज करना नहीं जानते, इसलिए कहते हैं समय नहीं है, बहुत समय है। हर व्यक्ति 3-4 घंटे स्पेयर कर सकता है अपने लिए। और सभी को ये भी बाबा की सूक्ष्म बातें जिसे हम सीक्रेट कहते हैं याद रखना चाहिए। जितनी स्थिति श्रेष्ठ होती जाएगी, सांसारिक प्राप्तियां स्वतः ही पीछे पीछे आएंगी। जिनके पीछे आप अपना ज्यादा समय दे रहे हैं, उससे आधा समय आप अपनी स्थिति के लिए दें, प्राप्तियां पीछे पीछे, क्योंकि हम प्रकृति के मालिक बन जाएंगे और सब प्राप्तियां प्रकृति की ओर से होती हैं। ये रहस्य आप में से जो समझते हो, हम प्रकृति के मालिक बन जाएं, हम प्रकृति को प्योर वाइब्रेशंस दें, प्रकृति हमें सब कुछ प्रदान करेगी। थोड़ी सी मेहनत करेंगे, बहुत कुछ मिलने लगेगा। बाबा ने कभी बहुत सुंदर बात कही थी, 4 सत्ताओं पर एक मुरली चली थी बाबा की, इसमें धर्म सत्ता, विज्ञान की सत्ता, ये अलौकिक आध्यात्मिक सत्ता, राजनैतिक सत्ता। जिसके पास ज्ञान धन बहुत है, उसे स्थूल धन कमाने में मेहनत नहीं लगेगी। इसलिए बहुत ध्यान देना है ज्ञान धन पर। ये ना सोचना ज्ञान तो सारा ले लिया। ज्ञान सागर की तरह है, अथाह और अनंत, उसकी तो थोड़ी सी उंचली भर ली है, अथाह है ये ज्ञान। जितना जितना योग अभ्यास बढ़ता जाएगा, बुद्धि रिफाइन होती जाएगी डिवाइन, और ज्ञान क्लियर समझ में आता जाएगा, तब पता चलेगा ज्ञान भी बहुत गुह्य है। इसलिए अपनी बुद्धि को स्वच्छ करना आवश्यक है। सभी चेक कर लें, पहले माताएं चेक करें क्या भरा है इस बुद्धि में। ये ब्रेन भी मनुष्य का एक पिटारा है ना, आप इसकी पिक्चर देखें अंदर से, अखरोट की तरह लंबा चौड़ा है, उसमें वो सब कुछ भरा रहता है जो आत्मा में है। आत्मा में सूक्ष्म रूप से, ब्रेन में स्थूल रूप से, वो सब प्रिंट रहता है। हमें इस गंदगी को साफ करना है। आप सभी इस भट्टी में गंदगी को साफ करने का प्लान बना कर जाएंगे। मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ जो फोन या ईमेल आते हैं, बहुत माताओं के पास जो समस्याएं हैं वो केवल सोचने के कारण हैं। बुद्धि में निगेटिविटी जो बहुत भर ली है उसके कारण है। कलकत्ता की माताएं बहुत बैठी है ना भाई भी, है ना? कौन कौन है जरा हाथ उठाएंगे? अच्छा, सभी लगभग। जब भी मैं फोन खोलूंगा तो दो चार बंगाल से जरूर आएंगे। मुझे पता चला उधर लोग ज्यादा देखते हैं प्रोग्राम। तो सभी अपने को पावरफुल बनाएं। एक छोटी सी बात समस्याओं के लिए कह दूं, मैंने बाबा से सुनी थी ये बहुत बहुत साल पहले, वहीं से मैंने ये सब प्रयोग करने शुरू किए थे। बात अब से शायद 40 साल के लगभग पहली होगी। समस्याएं क्या हैं? समस्याएं और कुछ नहीं, कमजोर मन की रचना है। ये मैंने बाबा से सुना, ये मुझे याद नहीं वो किसी संदेश में था या बाबा ने किसी को पर्सनल मुलाकात में कहा था। उन दिनों बाबा पर्सनली बहुत अच्छी तरह मिलते थे ना, एक एक से। पहले पार्टी आएगी, बाबा उसको कुछ कहेंगे, फिर एक एक से मिलेंगे। हम लोग बैठे रहते थे, सुनते रहते थे वो बातें। इसीलिए मैंने ये प्रयोग कराए कि अगर मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करें तो समस्याएं नष्ट हो जाती हैं, और इससे बहुत समस्याएं नष्ट हो गई। निर्विकारी स्थिति के लिए मैं आप सबको कहूंगा, कोई भी डरे नहीं पवित्रता की बात सुनकर, लेकिन एक पावरफुल संकल्प कर दें, हमें माया जीत बनना है, काम जीत, क्रोध जीत। जो इन दोनों को जीत ले वो संपूर्ण माया को जीत लेता है। मुझे इन पे विजय पानी है। तो मैं कुछ प्रैक्टिकल बातें ही करूंगा इसके लिए आपसे। सवेरे उठते ही लिख लेंगे आप ये बात, सवेरे उठते ही 5 संकल्प करने हैं, बहुत अच्छी तरह गुड फीलिंग से। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं विजयी रतन हूं, मैं माया जीत हूं, मैं काम जीत हूं, मैं परम पवित्र हूं। और जिसको अपनी प्योरिटी बहुत बढ़ानी है, ये 5 इसी क्रम में याद करेंगे, खुले दिल से। आपने सुनाई है, मैं बहुत बताता हूं ये बात, कि हमारे पहले 10 मिनट सवेरे उठते ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम है, क्योंकि हमारा अंतर मन सबकॉन्शियस माइंड जगा रहता है। उसमें भी एक बात पर आप विशेष अटेंशन दे देना, उठते ही जो हमारा पहला संकल्प होगा वो हमारे जीवन पर सबसे गहरा प्रभाव डालेगा। उठते ही आप ये 5 संकल्प कर दो बाबा को गुड मॉर्निंग करके, 5 बार कर दें, तो ये सब अंतर मन में चला जाएगा। देखो क्या होगा इससे, इसके पीछे जो फिलोसोफी है वो भी आप समझ लें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इससे हमारी शक्तियां जग गई। मैं विजयी रतन हूं, अब वो शक्तियां हमें विजय दिलाने में लग गई। मैं माया जीत हूं, उनकी डायरेक्शन हो गई माया की ओर। काम जीत हूं, वो काम को नष्ट करेंगी। और फिर ये गुड संकल्प, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। जिसको क्रोध को जीतना हो, ये 2-3 संकल्प करके, मैं क्रोध मुक्त हूं, मेरा चित्त शांत है। बहुत डीपली भले 7 बार संकल्प कर दो, मैं क्रोध मुक्त हूँ, मेरा चित्त शांत है, मेरा चित्त शांत है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड स्वीकार कर लेगा चित्त शांत है और वो उसको शांत कर देगा। इसके साथ साथ यही संकल्प करके जिनको अपनी प्योरिटी की पावर को बहुत बढ़ाना हो, ज्यादा नहीं, आधा घंटा स्पेशल योग, और उसमें मैं परम पवित्र आत्मा हूँ या पवित्रता की देवी हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ और ऊपर से बाबा की प्योर किरणें सफेद मुझ पर पड़ रही हैं। बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे, सावधानी रखनी है, ये अभ्यास करने से कभी कभी इम्प्योरिटी उखड़ जाती है और मनुष्य परेशान हो सकता है, घबराना नहीं है, तब पानी चार्ज करके पी लेना, इसके बहुत गुड रिजल्ट हैं। पानी चार्ज करके पानी को दृष्टि दें, 7 बार संकल्प करेंगे मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पानी दूध जूस कुछ भी फिर पिएंगे। बहुत अच्छी तरह इसको जान लें आप, हमारे शरीर में 72% पानी है, मोर देन 70, जो हमारे संकल्प चलते हैं सारा दिन वो पानी उनको ग्रहण कर रहा है। पानी बहुत सेंसिटिव है हमारे वाइब्रेशंस के लिए, अब वो पानी में भी इम्प्योरिटी समाई हुई है जो अनेक रोग भी पैदा करता है और जिसके कारण बॉडी में भी इम्प्योर फीलिंग रहती है। आपने पानी को पवित्रता से चार्ज किया, ये पानी इस पानी में मिलेगा और अंदर के पानी को पवित्र करेगा और आपको बहुत गुड फीलिंग होगी, कर्मेंद्रियां शीतल, ये सबको अभ्यास करना है। मैं फिर ये बात कहता हूँ, ये माया को जीतने की हमारी युद्ध है, जीत हमारी है, कल्प हमने जीता है, अनंत बार जीता है, इसलिए अपने अंदर ये फीलिंग बहुत बढ़ा दें, मैं विजयी रतन हूँ। इससे माया को जीतने की शक्ति एक्टिव रहेगी, मैं विजयी रतन हूँ। नेगेटिव संकल्प नहीं, माया को जीतना बड़ा कठिन है, ये तो बहुत तंग कर रहा है, इसने हार खाई उसने हार खाई, ये सब नहीं, हम विजयी हैं और जो इस माया को जीतते हैं वो विजयी रतन बनते हैं, और जो संपूर्ण निर्विकारी बन जाते हैं वो बनते हैं अष्ट रतन, जो इस संसार में शिव बाबा की तरह हो जाते हैं, बाप समान, धरती के 8 भगवान साकार, जिनका प्रकाश इस संसार के अंधकार को दूर कर देता है। ध्यान देंगे आप एक बात पर, हमारी प्योरिटी एक प्रकाश भी है तो हमारी प्योरिटी एक बल भी है। संसार में 2 ही बड़े बल हैं, प्योरिटी का बल और योग का बल। कुछ लोग हम में से ऐसे भी होते हैं जो ब्रह्मचर्य में बहुत स्ट्रांग, लेकिन अगर मन व्यर्थ में रहता है, अगर दृष्टि दूसरों की ओर रहती है, पर चिंतन दूसरों के अवगुण देखते रहते हैं, अगर ईर्ष्या द्वेष है, इन सब के कारण व्यर्थ संकल्प चलेंगे। ब्रह्मचर्य स्ट्रांग लेकिन ये सब चीजें हैं तो उस आत्मा के पास प्योरिटी का बल नहीं होता। वो बल्ब तो है जिससे रोशनी निकल रही है, पर एक कमरा ही उससे प्रकाशित होगा, बाहर नहीं जाएगी रोशनी। इसलिए निर्विकारी माना माया के 5 स्वरूपों को नष्ट करना, और साथ में जो छोटे छोटे स्वरूप हैं ईर्ष्या द्वेष पर चिंतन तेरा मेरा, इन सब से मुक्त। संगम योग पर तो वही बहुत बुद्धिमान है, मैं सोचा करता हूँ बुद्धिमान कौन है जो अपने को इन व्यर्थ की बातों से मुक्त कर ले। दूसरे क्या कर रहे हैं, इससे हमारा क्या जाता है। अंतर्मुखी करें अपने को। बुद्धिमान वही है, आज मैंने एक स्लोगन रखा था, बुद्धिमान वही है जो अपनी बुद्धि का सदुपयोग करे बाबा से सर्वस्व लेने के लिए। कईयों की तेज बुद्धि होती है, इधर उधर देखते हैं, मधुवत में भी आएंगे तो दो चार के अवगुण उठा के ले ही जाएंगे, उन्हें अच्छा ही नहीं दिखेंगी, ये बुद्धि का दुरुपयोग। और वो अपने को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, कहेंगे तुम्हें क्या पता, हम सब देखा है, सब तो देखा है पर अपने को नहीं देखा। एक बहन 8 साल रही कहीं, जा रही थी घर, सबसे छुट्टी ली उसने, जा रही हूं घर, बड़े प्यार से जा रही थी, किसी ने मुझे मिलाया, बहन जी जा रही हैं 8 साल रही हैं, मिल लो इनसे। मैं अलग से मिला, मैंने पूछा हुआ क्या, मैंने सब कुछ देख लिया, मुझे उसकी चुननी थी पहले, मैंने उसकी सब सुनी और फिर इतना ही कहा कि सब कुछ तो देख लिया, यदि अपने को भी देख लेती तो जाना न पड़ता, जाने वालों को रोक देती। मनुष्य बहुत बड़ी गलती कर रहा है, सबको देख रहा है सिवाय अपने, अपने को देख लें तो हमें अपने अंदर प्योरिटी का बल बढ़ाना है। प्योरिटी की परिभाषा कल परसों मुरली में थी, बेहद की पवित्रता माना, एक के सिवाय कहीं भी बुद्धि न जाए। न केवल बुरी दृष्टि से बुद्धि जाती है, लेकिन कोई आपको तंग कर दे उसको भी तो सारा दिन याद करते हैं, बल्कि उसको ज्यादा करते हैं, उसको ज्यादा करते हैं, इसने आज मुझे ये बोल दिया, सारा दिन याद कर रहे हो उसे। इन सबसे ऊपर थ्योरिटी की इसलिए बाबा ने परिभाषा दी अव्यक्त में, न केवल व्यर्थ संकल्पों से मुक्त बल्कि साधारण संकल्पों से भी परे जाने वाले स्वमानधारी आत्माएं संपूर्ण पवित्र कहलाते हैं। तो अपने अंदर प्योरिटी का बल भरना है। चले हम एक प्रैक्टिस करते हैं इसकी, 5 मिनट करेंगे और सभी संकल्प कर लें, मुझे इस बल से स्वयं को संपन्न करना है। 2 संकल्प देता हूं, सफेद लाइट बुझा दो। मैं पवित्रता की देवी हूं, पवित्रता का सूर्य हूं। लाल लाइट करो, सफेद बंद कर दो। मेरा जन्म ही संसार में महान कार्यों के लिए हुआ है। बाबा ने मुझे अपनी शक्तियां और वरदान देकर नीचे भेजा है कि जाओ इस संसार में पवित्रता सुख शांति का साम्राज्य स्थापित करो। पवित्रता का वरदान लेकर ही मैं आत्मा इस देह में आई हूं। मैं पवित्रता की देवी हूँ, पवित्रता का सूर्य हूँ, मुझसे चारों ओर पवित्र किरणें फैल रही हैं। परम धाम में बाबा पवित्रता के सागर, उनकी पवित्रता के तेज से सारा ब्रह्मलोक जगमगा रहा है। अब उनकी ये पवित्र किरणें नीचे आ रही हैं, मुझ में समा रही हैं। ऊपर से जैसे कि इन सफेद किरणों की बरसात हो रही है, ओम शांति। माया के इन पांचों महारथियों को जीतना है। क्या याद रखेंगे, ये पांचों तो प्रबल हैं, परंतु हमारे साथ है सर्वशक्तिवान। इनकी हार निश्चित है और हमारी जीत। दृढ़ कर दें अपने को, केवल संकल्पों की दृढ़ता की जरूरत है। कई लोग क्रोध को नहीं जीत पाते, इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने भी कह दिया इसको जीता नहीं जाता, पर जीता जाता है। क्रोध से भी यही होता है, आत्मा बहुत पवित्र हो लेकिन क्रोध भी आता हो तो पवित्रता का तेज नष्ट होता रहता है। मोह में भी पवित्रता का तेज नष्ट होता रहता है। इसलिए जिनको संपूर्ण पवित्र बनना है वो आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करें, अपने अपने घरों में करें, अपने बच्चों को सब मेंबर्स को दो बार आत्मा देखा करें। ये सब देव कुल की महान आत्माएं हैं। आपके घर में अलौकिक वाइब्रेशंस फैलने लगेंगे। आत्मा देखने से प्योरिटी बहुत बढ़ जाती है, और ये केवल प्रैक्टिस की चीज है, इसमें कुछ मेहनत नहीं है। जिनको अपने को व्यर्थ संकल्पों से बचाना है वो भी आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करें। स्वतः ही अनेक तरह का व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। मैं आप सभी को एक दो धारणाएं और कह देना चाहता हूं। कोई भी आप में से अगर बहुत सेंसिटिव हो, दो शब्द हैं सेंसिटिविटी और इमोशनल होना, बड़ा भावुक, बहुत सेंसिटिव, जिसको फीलिंग बहुत आती है, जो नाजुक मन वाले हैं, इन दोनों को जल्दी ठीक करें। क्योंकि जो सेंसिटिव हैं और निगेटिवली इमोशनल हैं, इमोशन तो अच्छी चीजें भी हैं, भावनाएं अच्छी चीजें भी हैं, जीवन में भावुक होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, परंतु निगेटिवली इमोशनल जो हैं, जिनको फीलिंग बहुत आती है, उन्हें जानना चाहिए हमारे चारों ओर जैसे निगेटिव एनर्जी का सागर लहरा रहा है। अगर हमें क्रोध आता है, अगर हम निगेटिव रहते हैं, अगर हम सेंसिटिव बनकर रहते हैं, तो सारी एनर्जी को ग्रहण करते रहते हैं, जो सबसे खतरनाक बीमारियां पैदा करेगा, स्थिति को बिगाड़ेगा और हमसे वाइब्रेशंस भी कमजोर फैलने लगेंगे। बचना है इससे सभी को। यद्यपि एक अच्छी मेहनत का विषय है कि अपनी फीलिंग को समाप्त करें, और दूसरी धारणा में कहना चाहता था जो बाबा हमेशा हमें कहते हैं, खुश रहो। भगवान को कैसा लगता होगा ये देखकर कि उसके बच्चे ही खुश नहीं रहते। लोग उसे कहेंगे ना, पहले अपनों को तो खुश करो, हमसे पीछे बात करना, कहेंगे या नहीं। खुश रहना, हालांकि कईयों के लिए ये भारी पड़ गया है आजकल, सबसे महंगी हो गई है खुशी, लेकिन खुशी को बढ़ाना तो है। नेचर को चेंज करें, एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कम करें, सुंदर संकल्प क्रिएट करें। आज की मुरली में था ना, खुशियों में खग्गी मारो, अरे भगवान तुम्हें विश्व की बादशाही देने आया है। मुझे याद है बाबा जब साकार में थे ना, तो आखिरी साल 68 रात्रि क्लास बहुत सुंदर चलती थी, और वो रात्रि क्लास ब्रह्मा बाबा का अनुभव होता था रोज। बाबा बहुत कहते थे तुम्हें तो इतनी खुशी होनी चाहिए कि दिमाग फट जाए। ये एक शब्द है, एक बार कहा अरे तुम्हें इतनी कितनी खुशी होनी चाहिए, सोचो भगवान तुम्हारी मुट्ठी में आ गया है। हम छोटे थे, हम सोचा करते थे हम तो मुट्ठी बंद कर लेते हैं, मुट्ठी में आना माना वश हो गया है। भाग्य विधाता तुम्हारी मुट्ठी में है, खुशी के संकल्प क्रिएट करें। सबको नोट करनी चाहिए कम से कम 10-20 बातें जो हमें खुशी दें, मुरलियों में रोज आती हैं। तो प्योरिटी का तेज मस्तक से चमक कर दिखाई देगा। खुशी नहीं रहती पवित्र आत्माएं तो पापी कैसे खुश रहेंगे, पर उल्टा हो गया, पापी बड़े खुश हैं, पुण्य आत्माओं के चेहरे थोड़े दूसरे हो जाते हैं, क्योंकि पाप का मार्ग खुला है, सत्य के मार्ग पर कांटे बिछे हैं, कठिनाइयों से भरा है। बहुत सुंदर टॉपिक है, बड़ा है, इसको आप चिंतन करेंगे और अपनी प्योरिटी को बल बनाएंगे, बल। और बाकी सब चीजें जो इसके बाल बच्चे हैं ना, ईर्षा द्वेष तेरा मेरा, उससे मुक्त होंगे। ईर्षा के लिए एक बात कह देता हूं बस, जो मुझे पता चली जब से, बहुत अच्छा रहा। कहां मैंने पढ़ा था ये, कहां देखा मुझे याद नहीं है। मान लो एक व्यक्ति बहुत सफल हो रहा है, उसका बहुत नाम हो रहा है और हम उससे ईर्षा कर रहे हैं। बड़ी कॉमन टेंडेंसी है ना मनुष्य की ईर्षा करना। तो लिखने वाले ने लिखा तुम उस व्यक्ति से ईर्षा नहीं कर रहे हो, उसकी सफलता और उसकी नाम से ईर्षा कर रहे हो, और जिससे तुम ईर्षा करते हो वो तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी। तुम अपनी सफलता के मार्ग को अवरुद्ध कर रहे हो, वो तुम्हारे पास आएगी नहीं। इसलिए अप्रिशिएट करो, महिमा करो, सफलता मिली वाह, रसम भी है ना, उसको बधाई देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, किसी का नाम हो रहा, अपने अंदर ऐसे संकल्प करो ये कितना अच्छा व्यक्ति है, कितना इसका नाम हो गया, इसने कितने अच्छे कर्म किए, इसका बहुत नाम हो रहा है, ये बड़ी पुण्य आत्मा है, तो वो नाम हमारे पास भी आ जाएगा। इसलिए ईर्षा को सूक्ष्म शत्रु मान कर उससे किनारा कर लेना। सब आगे बढ़ रहे हैं, हमारी दादी जी कहा करती थी, सब आगे बढ़े मेरा दिल ठरे ठंडा हो। दादी में बहुत मानता है, हमने देखी, हम तो पास रहे और किचन के कारण दादी रोज आती थी। जब छोटा किचन था, बाबा अव्यक्त हुए, दादी यहाँ आई, 5 बार किचन में आती थी हमारे पास, हमें सिखाने भी आती थी, हम तो कुछ जानते नहीं थे। बहुत अच्छी अच्छी बातें उनसे हमें जानने को मिली। हमने ये पहले से ही लक्ष्य रखा था, छोटेपन से ही सीख लिया था, अपनी बुद्धि के द्वार सदा खुले रखो सीखने के लिए, इनको बंद न होने दे कभी, हमें अंत तक सीखना है। अहम निरहंकारी, बाबा भी बहुत निरहंकारी थे शुरू में। मैंने अपने पास ये बातें रखी थी कि संसार में सबसे बड़ी हस्तियां दो हैं, आज भी था मुरली में वो हाईएस्ट, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। सबसे अधिक बुद्धिमान भी दोनों हैं, ब्रह्मा ही तो सबसे अधिक बुद्धिमान है सृष्टि पे, लेकिन दोनों ही संपूर्ण निरहंकारी हैं, और हमारे पास तो है ही क्या जिसका अहंकार करें। बहुत काम आई ये बात। दूसरी बात, बाबा की मुरलियों से मिली, बहुत सुंदर, जो कुछ तुम्हारे पास है वो परमात्म देन है, उसका अभिमान नहीं। मेरे लिए सबसे सुंदर बात थी, क्योंकि मुझे बहुत कुछ मिला, वो मुझे पता है, कई चीजें ऐसी जो दूसरों को पता नहीं चलती, अपने को पता होता है, बहुत कुछ मिल गया, तो याद रहता है परमात्म देन बहुत है। इससे अपने अहंकार को मिटाते चलें। सभी सूक्ष्म रूप से चेक करेंगे किस चीज का अभिमान है मेरे पास, बुद्धि का, धन का, बल का, परिवार का, सफलता का, मान सम्मान बहुत मिला है, समाज में हम बहुत आगे हैं, हमारी पूछ बहुत है, किस चीज का अभिमान है। इसे छोड़ना है इस संकल्प से कि सब कुछ प्रभु देन है। हमें सुख ही तब मिलेगा जब हम निरहंकारी बनकर रहेंगे, नहीं तो हमारी अपनी चीजें हमें कष्ट देंगी। और सूक्ष्म बात याद रखना है, जिस चीज का हमें अभिमान होगा वही हमारे लिए कष्टकारक हो जाएगी। बुद्धि का अभिमान है, बुद्धि तंग करेगी, बहुत सोचेंगे। धन का अभिमान है, धन बेकार में चला जाएगा। बच्चों का अभिमान है, घर से निकाल देंगे, वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे। मान सम्मान का अभिमान है, वो अभिमान सोने भी नहीं देगा ठीक से। इसलिए मुक्त हो जाएं। और भी बहुत बातें हैं। अहंकार का, अभिमान का सूक्ष्म स्वरूप है मैंपन। लंबी लिस्ट हो सकती है मैंपन की, कम से कम 25 तरह के मैंपन। उसको पहचानना है, मेरे पास इस तरह का मैंपन है। बहुत उसको पकड़ नहीं पाते हैं दुनिया में, ब्राह्मणों में भी। हम अपने सूक्ष्म मैंपन को भी समझते चलें। और बाबा ने 2-3 साल पहले एक बहुत अच्छी बात कही जो हमारे लिए बहुत सुंदर है, मैं राइट हूं। ये सोचना बड़ा सूक्ष्म मैंपन है। हम राइट हो सकते हैं, ऐसा नहीं हम गलत होंगे, पर इसको अभिमान का रूप दे देना, इसको टेंशन बना देना, इसकी जरूरत नहीं। जितना जितना निरहंकारी बनेंगे बुद्धि डिवाइन होगी। ये अभिमान ऐसा है जैसा हमारी बुद्धि के लिए विष, पॉइजन, जो जहरीला करता है हमारे जीवन को। तो सभी ध्यान देंगे, मेरे पास मैं पन कहाँ कहाँ है थोड़ा सा सुन लें। कोई माता सोच सकती है, मैं घर की मालिक हूँ। कोई भाई सोच सकता है, मैं कमाने वाला हूँ, मालिक मैं हूँ। सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार ही होना चाहिए। पत्ता भी घर में मेरी इच्छा के अनुसार ही ले। कल पत्तों की बात थी ना। और कोई माता सोच सकती है, मैं बहुत बुजुर्ग हूँ, अनुभवी हूँ, तुम क्या जानो, तुम तो छोटे बच्चे हो। मैं भिन्न भिन्न रूप में आता है। मैं बुद्धिमान हूँ, मेरी बात सुनी जाए, मुझे मान देना ही चाहिए। बचेंगे इससे, मान की बात के लिए मैं आपको एक अनुभव की सीक्रेट बात सुनाऊं। ज्ञान का सीक्रेट है वो, बहुत सुंदर। 77 में मुझे मिला था, जब मैंपन पर बाबा की मुरलियां चलती थी और मैं भी अपने पुरुषार्थ में इस पर बहुत केयरफुल था कि मुझे मैंपन को जड़ से निकालना है, जो भगवान कह रहा है उसे पूरा करना है। तो बाबा की बहुत सुंदर बात मिली, तुम हो इस धरा पर सूर्य तुल्य। 77 में मिली। देखो, सूरज से प्रकाश फैलता है ना सारे संसार में, निकलते ही अंधकार विलीन हो जाता है। तुम हो इस धरा पर सूर्य तुल्य, और ये मान श्यान है टिमटिमाते दीपक। बहुत थोड़ी रोशनी देंगे ना। तुम इन दीपकों से स्वयं को प्रकाशित करने का तुच्छ संकल्प न करो। छोटा संकल्प हो गया ना कि दीपक हमें प्रकाश दें। ऐसा हो गया जैसे सूरज मांग रहा हो प्रकाश दीपकों से कि मेरी लाइट कम हो गई है, मुझे दो। हंसेंगे ना। तो मान सम्मान बहुत छोटी चीज है। बहुत सुंदर महावाक्य मिले मुझे वही रात्रि क्लासेज में, बच्चे मनुष्यों से मान लेकर क्या करोगे, तुम्हें तो स्वयं भगवान मान दे रहा है। सच है ये बात, भगवान अपने बच्चों को बहुत सम्मान करता है। दूसरी बात भी स्वमान की मिली, जो स्वमान में रहते हैं उन्हें भगवान और प्रकृति दोनों सम्मान देते हैं। प्रकृति भी तूफान करना छोड़ देगी, गर्मी ठंड में बदल जाएगी, ठंड नॉर्मल हो जाएगी। आप करके देखें जरा स्वमान के अभ्यास, प्रकृति के मालिक बन जाते हैं हम। तो हम संपूर्ण निरहंकारी बनेंगे, हमारे बोल से, हमारी दृष्टि से, हमारे चलने से किसी को अभिमान की फीलिंग ना आए। कई लोग चलते ही ऐसे हैं, पता चलता है अभिमान बहुत है। बात भी करेंगे तो शब्दों से अभिमान छलकने लगता है, जैसे दूसरों का अपमान कर देते हैं फटाफट। ये तीनों धारणाएं हम सबके लिए अंतिम स्थिति वाली हैं, संपूर्णता की ओर ले चलने वाली। आप सभी इन पर बहुत ध्यान देंगे। मैं एक अभ्यास जो मुझे बहुत प्रिय लग रहा है बहुत दिनों से, आप सबको भी कहना चाहता हूँ, और उसको सब रोज अभ्यास किया करें, चाहे प्योरिटी के लिए चाहे निरहंकारी के लिए। पांच स्वरूपों का अभ्यास करना बहुत सुंदर बात है, उससे एकाग्रता भी बढ़ जाती है और हमारे डिवाइन संस्कार भी जागृत हो जाते हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान दिलाता हूं, रोज एक बार, कम से कम एक बार सूक्ष्म लोक में बाबा से मिलन का, उसकी दृष्टि का अनुभव करें। सूक्ष्म लोक में अपने को महसूस करें ऊपर। देखो कैसे करेंगे, मैं आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक में हूं, सामने बाप दादा को देखें क्लियर, ब्रह्मा बाबा अंग अंग से किरणें फैल रही हैं, मस्तक में शिव बाबा चमक रहे हैं, फिर बाबा दृष्टि दे रहे हैं, फिर बाबा ने वरदान दिए, फिर बाबा से मिल लो, गले मिल लें, रास करें बाबा के साथ, एक 5-7 मिनट सुंदर मिलन हो जाए, बहुत आत्म तृप्ति होगी इससे। और मैं सबको एक चीज कहता हूं जो बाबा ने कभी टीचर्स को कही, मुझे वो बात बहुत प्रिय लगी थी, 5 साल पहले कही थी। रोज सवेरे बाप से दृष्टि लो और संसार को दृष्टि दो, चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में दृष्टि दी जा सकती है, या सामने ग्लोब को इमर्ज करके दृष्टि दी जा सकती है, तो बहुत सुख मिलेगा और ये ईश्वरीय सुख हमें निर्विकारी बनाता है, माया की अग्नि को बुझा देता है, चित्त को शीतल और निर्मल करता है। इसकी सब प्रैक्टिस करेंगे। अब इसी प्रैक्टिस के साथ हम समाप्त करेंगे, लाल लाइट करेंगे, ट्यून बजाएंगे, एक सेकंड में अपने को ऊपर देखें, आकाश के ऊपर ये सूक्ष्म लोक, ये फरिश्तों की दुनिया, सफेद प्रकाश, यहां परमानंद की अनुभूति है। यहां के सारे वाइब्रेशंस आनंद से भरपूर हैं। सामने खड़े हैं बाप दादा, बाबा के तन में शिव बाबा माँ ज्योति किरणें फैल रही हैं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। अब बाबा ने अपनी हजार भुजाओं की छत्र छाया मेरे सिर के ऊपर फैला दी। और बोले, बच्चे तुम अकेले नहीं हो, मैं हजार भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूँ। मस्तक पर तिलक लगाया और वरदान दिया, बच्चे विजयी भव। संपूर्ण पवित्र भव। निर्विघ्न भव। सिर पर अपना वरदानी हाथ रख दिया, हाथ से सुखदाई पवित्र किरणें मुझ में समाने लगी। बोले, बच्चे तुम साधारण नहीं हो, देव कुल की महान आत्मा हो। तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। तुम विजयी रतन हो। ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हो। इस सृष्टि का श्रृंगार हो। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। दृष्टि लेते हम बाबा के गले मिल गए। तन मन में उनके वाइब्रेशन समाने लगे। और हम वापिस ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।
शुक्रिया कर रहे हैं आपका बिना बोले। एक थैंक्स के बदले इतने सारे थैंक्स। अभी रिफ्रेशमेंट ब्रेक और उसी स्मृति में जाना है जैसे भाई जी ने याद करवाया, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, निर्विकारी बनना ही है और कोई चारा नहीं है। क्योंकि जितने चमकते हुए हम आए थे घर से, उतना ही चमक कर वापस जाना है।